हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युग और कृषा के बीच सब कुछ तो ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अब युग कृषा को लेकर उतना रूढ़ भी नहीं था। वो उसे स्पेशल सेल से वापस अपने कमरे में ले आया था। कृषा के सोने के बाद युग नीचे आया। वहाँ उसने हरलीन और हर्षवर्धन को बातें सुनी। आदित्य सिंघानिया ने हरलीन के सामने जो शर्त रखी थी, उसी के बारे में हरलीन उन्हें बता रही थी। युग ने किसी भी तरह के समझौते के लिए साफ मना कर दिया था। वो कोल्ड वॉइस में बोला, बुआ, आप उस मीटिंग में गईं क्योंकि मैं चाहता था आप जाएं। कुछ बातें इस तरह ही पता चल सकती थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ पर आकर उनका फेवर करें। युग की बातों से हरलीन समझ गई थी कि वो उसकी और आदित्य सिंघानिया की मीटिंग की बातें सुन चुका है। हरलीन युग के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, क्यों नहीं हो सकता युग, पहले भी तो सिंघानियाज और आणाज मिलकर इस लेगेसी को संभालते थे, तो अब क्यों नहीं हो सकता। तुम्हारा एक डिसीजन बरसों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर सकता है। प्लीज थोड़ा रिलैक्स होकर सोचो और फिर डिसीजन लो। मैं रिलैक्स ही हूँ बुआ, युग ने थोड़ा शांत लहजे में जवाब देते हुए कहा। आज जब उनका पलड़ा कमजोर पड़ा है तो वो समझौते की बात कर रहे हैं। अगर यही समझौता वो उस वक्त करते जब उन्होंने कृषा को किडनैप किया था, तब मैं मना नहीं करता। तब उन्हें यही लगा था उनका पलड़ा भारी है और वो जीत जाएंगे। तब तो उन्हें मुझे और कृषा को अलग करना सूझ रहा था, सो उन्होंने किया। आज जब कृषा मेरे पास आ गई है, तब उन्हें समझौते और बीच का रास्ता निकालने के बाद याद आई। बोलते हुए युग की आवाज़ तेज होने लगी, उसका गुस्सा बढ़ रहा था। हर्षवर्धन ने युग की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं आदित्य को अच्छे से जानता हूँ, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ भी उसे अपनी हार होती दिखाई दे रही है, तो उसे कोई शांति समझौता करना है। ऐसा नहीं होगा, जब कृषा को उसने किडनैप किया था तब हमने उसे बहुत प्यार से समझाया था और आराम से बात करने की कोशिश की थी ताकि मामला अच्छे से सुलझ जाए। उस समय उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, तो आज हम क्यों अपने कदम आगे बढ़ाएं। युग की तरह हर्षवर्धन भी किसी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे। हर्षवर्धन के साथ देते ही युग कंधे उचकाकर बोला, मामला यहीं क्लियर हो गया, आगे से इस बारे में बात नहीं होगी और आप सिंघानिया फैमिली के किसी मेंबर से मिलने नहीं जाएंगी। युग ने इतना ही कहा और वो वहां से जाने को हुआ, तभी हरलीन ने कहा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कृषा को तो वहां से वापस निकाल लो। तुमने सारी बातें सुनी है तो इतना समझ आ गया होगा कि जो भी हुआ उसमें कृषा की गलती नहीं थी, उसका अबॉर्शन एक तरह का एक्सीडेंट था, नथिंग एल्स। युग हरलीन की तरफ पलटा और कहा, वो मेरे रूम में है और मैं उसे निकाल चुका हूँ, मैं आपसे यही बात करने आया था लेकिन आपकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। बोलते हुए युग ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर आगे कहा, कृषा किसी मॉल में गई थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था दादू। मेरे माफिया किंग बनने के बाद पूरा अंडरवर्ल्ड जान चुका था कि कृषा सिंघानिया ही असली माफिया प्रिंसेस थी, वो मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो मेरे दुश्मन के लिए ये अच्छा मौका था मुझे मात देने के लिए। मुझे उस मॉल की उस दिन की पूरी फुटेज चाहिए जिस दिन कृषा घूमने के लिए वहाँ गई थी। ठीक है, दो घंटे में तुम्हें सब मिल जाएगा, हर्षवर्धन ने जवाब दिया, बस मुझे मॉल का नाम और डेट बता देना। युग ने कृषा से पहले ही सब कुछ पूछ लिया था, उन्होंने हर्षवर्धन राणा को सब बताया। हर्षवर्धन वहां से चले गए। उनके जाते ही युग ने हरलीन की तरफ देखा जो थोड़ी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि युग ने आदित्य सिंघानिया से समझौता करने से मना कर दिया था। युग हरलीन को हर्ट नहीं देखना चाहता था, वो उसके पास आया और हरलीन को गले लगाते हुए कहा, आप मेरी स्ट्रेंथ हो, आप ही इमोशनल हो जाओगी तो मैं कैसे हैंडल करूंगा सब कुछ, यू नो व्हाट, तभी मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना होता, आप लोग मुझे वीक कर देते हो। हरलीन युग से अलग हुई और उसे डांटने के लहजे में कहा, इमोशनल ना हूं तो और क्या करूं, इतने सालों बाद सब कुछ ठीक होने को आ रहा था। डैली जी फिर भी किसी मामले में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आदित्य अंकल नहीं करते हैं। इतने सालों में पहली बार वो अपनी तरफ से सब ठीक करने के लिए आए थे और तुम उनका प्रपोजल ठुकरा रहे हो। युग ने सिर हिलाकर कहा, बुआ मुझे आपकी यही आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, आप क्यों भूल जाती हैं वो शख्स कितना ज़्यादा सेल्फिश है, उनकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोच रही हो, आई रियली हेट दिस। युग और हरलीन दोनों ही अपनी अपनी तरफ से घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे थे। एक लंबी बहस के बाद युग ने कहा, हमें यहाँ बहस करते हुए सिर्फ एक घंटा हुआ है, अगर आप एक साल भी यहाँ बैठकर मुझसे आर्ग्यूमेंट करेंगी तब भी मैं आदित्य सिंघानिया से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाला हूँ, उन्होंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए आप उन्हें माफ़ कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। अब तो मुझे एक और वजह मिल गई है उनसे बदला लेने की, उन्होंने कृषा को किडनैप करके मुझसे अलग कर दिया, दूर रहने से हम दोनों के प्यार में इतनी दूरियाँ आ गई हैं कि हम चाहकर भी उसे नहीं मिटा पा रहे हैं। मुझे पता है तुम कर लोगे, हरलीन ने मुस्कुराकर कहा, वो भी अब और बहस नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने बातचीत का टॉपिक बदलते हुए कहा, चलो बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया, उसे सोए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, जाकर उसके लिए खाना लेकर जाओ। हाँ अब तो उसका केयरगिवर बनने के अलावा मेरा और कोई काम भी नहीं है, युग ने आइज रोल करके कहा। उसकी बात सुनकर हरलीन मुस्कुरा दी। युग वहां से कृषा के लिए खाना लेकर गया, कृषा की तबीयत खराब थी इसलिए वो उस हिसाब से ही उसके लिए खाना तैयार करवा कर लेकर गया था, उसके साथ कुछ दवाइयां भी थी। युग अपने फ्लोर पर पहुंचा तब तक कृषा सो रही थी, उसे देखकर युग ने धीरे से कहा, आज भी इसे बच्चों की तरह जगाना पड़ता है, क्या करूं मैं इस लड़की का। अगर इसके दादू इसे किडनैप करके लेकर ही गए थे तो कम से कम ढंग से ट्रेनिंग देकर वेल ट्रेन करके तो लेकर आते ना। इसे कुछ नहीं आता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे ये इमोशनली पहले से ज्यादा वीक हो गई है। इसके साथ सख्ती करके मुझे ही बुरा लगता है, पर ये नहीं सुधरने वाली। युग काफी देर तक कृषा के चेहरे को देखकर खुद से बातें कर रहा था। फिर उसे जगाने के लिए युग उसके पास आया और उसके सिर पर हल्का सा किस किया। युग के टच करने पर भी कृषा की नींद नहीं टूटी। युग उसके पास आकर लेट गया। युग कृषा के चेहरे पर झुका और नींद में ही उसे किस करने लगा। अचानक युग के करीब आने पर कृषा की नींद टूटी और उसे लगा कोई और इस तरह उसके करीब आया है। सेल्फ डिफेंस में कृषा ने युग के पेट में एक जोरदार पंच किया जिससे युग चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। कृषा ने जल्दी से उठकर देखा तो वो युग था, तो वहीं युग तिरछी निगाहों से उसकी तरफ गुस्से में घूर रहा था। युग कृषा को जगाने के लिए कमरे में आया हुआ था। उसके जागने पर भी कृषा नहीं उठी तो युग कृषा के पास आया और उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत पर कृषा नींद में चौंक गई और उसने युग के पेट में जोरदार पंच मारा। युग कृषा से थोड़ा दूर लेटा था और उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रहा था। युग को अचानक मारने पर कृषा को एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वो जल्दी से युग के पास आई और उसे उठाते हुए कहा, आई एम सॉरी युग, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पास आए हो। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पंच नहीं मारती। तुम्हें लगी तो नहीं? कृषा अपने किए की सफाई देने लगी। इस चक्कर में वो भूल गई थी कि उसने कुछ नहीं पहना है।
अचानक ध्यान जाने पर कृषा ने जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर किया और अपनी नजरें नीचे कर ली। युग उठा और कृषा के सामने बैठ गया। उसने कृषा का चेहरा ऊपर करते हुए कहा, चलो इसी बहाने पता तो चला कि तुमने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है। सेल्फ डिफेंस के लिए इतना काफी है। मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है, तुम्हें देखना है? कृषा ने नजरें उठाकर मासूमियत से कहा। हाँ ऑफ कोर्स, युग ने भौंहें उठाकर कहा। तुम्हारा एक टेस्ट तो बनता है, पता तो चले कि तुमने पिछले 2.5 साल कहाँ वेस्ट किए। युग उस वक्त काफी सार्कास्टिक वे में बात कर रहा था जबकि कृषा ने उसकी बात पर मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। कृषा के कुछ नहीं कहने पर युग ने उसकी तरफ देखकर कहा, लगता है हम दोनों के ही 2.5 साल वेस्ट कर दिए तुम्हारे दादू ने। और वो कैसे? कृषा ने हैरानी से पूछा। वो कभी तुम्हें फुर्सत से बताऊंगा, पहले फ्रेश होकर आओ। तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, ना कि किसी टेस्ट की, युग ने जवाब दिया। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर उसकी नज़र बेड साइड पर रखे खाने की ट्रे पर गई। उसे इस वक्त खाने की जरूरत थी तो कृषा बिना किसी शिकायत के उठने लगी। उसने अभी भी खुद को ब्लैंकेट में लपेट रखा था। लगभग 10 मिनट बाद कृषा बाथरूम से वापस आई तो युग उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। उसके बाद युग कृषा को काफी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए खाना खिला रहा था। कृषा बस चुपचाप युग की तरफ देख रही थी। फिर उसने अचानक से नम आंखों से पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया युग? कृषा का सवाल सुनकर युग के हाथ रुक गए थे। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या लगता है कृष, मैं क्या तुम पर बेवजह गुस्सा कर रहा हूँ? यहाँ मेरे पास आने के बाद भी तुम अपने भाई को छुड़ाने पर फोकस कर रही थी, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। आई एम सॉरी युग, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। दादू ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनका काम पूरा करने से पहले तुम्हारे पास जाने की कोशिश की तो वो मुझे मार देंगे, कृषा ने नजरें झुकाकर कहा। युग ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कृषा का चेहरा ऊपर करके कहा, तुम सच में इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हो कृष, कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठा ले? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें अपनी ये मासूमियत छोड़नी होगी। अब समझ आ गया होगा कि तुमने अपने 2.5 साल कहाँ वेस्ट किए। तुम अब तक ये नहीं समझ पाई कि वो तुम्हारे दादू हैं और तुम उनकी फ्यूचर जेनरेशन, वो तुम्हें क्यों मारेंगे बेवकूफ़ लड़की? लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई उनके मकसद के बीच में आएगा, वो उन सबको ख़त्म कर देंगे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो, दादू का प्लान ख़राब नहीं होना चाहिए। तुम माफिया किंग नहीं रहोगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कृषा ने जवाब दिया। कृषा अभी भी युग की बात नहीं समझ पा रही थी। युग ने कृषा का चेहरा पकड़कर कहा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे पड़ने वाला है। बहुत अच्छे से गेम खेला है तुम्हारे दादू ने और तुम समझ भी नहीं पाई। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे खिलाफ जाकर खड़ी हो जाओगी और मेरा मुझसे सब कुछ छीन कर ले जाओगी? उसके बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी अपने गले से लगा कर रखूंगा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? नो कृष, मैं कोई लवर बॉय नहीं हूँ। माफिया किंग बनना मेरा ड्रीम था और जो मैंने अपनी मेहनत से, खतरों का सामना करके, अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किया था। इतनी आसानी से मैं अपना सब कुछ किसी को नहीं ले जाने दूंगा, तुम्हें भी नहीं। कृषा ने आगे कुछ नहीं कहा। उसका खाना खत्म हो गया था और अब युग भी उससे और बहस नहीं करना चाहता था। उसने कृषा को कुछ मेडिसिन देते हुए कहा, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ले लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और एक बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो, युग राणा से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, ना तुम और ना तुम्हारे दादू। मेरे सिर्फ दो ही ऑब्सेशन हैं, एक माफिया किंग की पोजीशन और दूसरी तुम। मैं तुम दोनों को ही नहीं खो सकता, चाहे जरूरत पड़ने पर मुझे तुम्हारे दादू की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। युग जिस तरह से बात कर रहा था उससे कृषा को डर लग रहा था। उसने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हामी भरी। युग और कृषा वहां बैठे थे तभी युग के पास हर्षवर्धन जी का कॉल आया। उन्होंने सारी फुटेज मंगवा ली थी। वैसे भी इस तरह के छोटे मोटे काम करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। युग लिफ्ट के पास गया तब उसे मलिक दिखा। युग ने मलिक से पेन ड्राइव लिया और वापस अंदर आ गया। युग ने लैपटॉप में उस पेन ड्राइव को इंसर्ट किया और फिर कृषा की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा पहला टेस्ट अभी से शुरू होता है। माफिया में सबसे जरूरी चीज होती है फोकस रखना। अगर हमारा ध्यान हमारे गोल से हटा तो कोई भी हमें हमारी पोजीशन से हटा सकता है। मैं देखता हूं तुम्हारी फोकस और चीजों को ऑब्जर्व करने की पावर कैसी है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, कृषा ने पूछा। युग ने लैपटॉप ऑन किया और फुटेज प्ले करते हुए कहा, जिस दिन तुम पेरिस के मॉल में घूमने के लिए गई थी ये उस दिन का पूरा फुटेज है। तुम्हें इस मॉल में कोई भी ऐसा इंसान दिखाई दे जिसे तुम जानती हो तो मुझे बताना। युग ने कृषा को उसका काम बता दिया था और लैपटॉप उसके हाथ में थमा दिया। लेकिन ये काम तो तुम भी कर सकते हो, फिर मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे ये किसी तरह का टेस्ट तो नहीं लगता, कृषा ने हैरानी से पूछा। हाँ, टेस्ट तो नहीं है और अचानक से मैंने कुछ प्लान नहीं किया। मैं बिजी हूँ और तुम इस कमरे में फ्री बैठकर कुछ नहीं करने वाली हो, तो यही कर लो, युग ने बेपरवाही से जवाब दिया और कृषा के करीब खिसक कर लैपटॉप में देखने लगा। युग के करीब आने पर कृषा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। युग ने भले ही डायरेक्टली कुछ ना कहा हो कि उसने कृषा को माफ कर दिया है, पर उसके हाव भाव से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी कृषा के पास रहना चाहता है, चाहे फिर बहाना कोई भी हो।